तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है।
ओम शांति। आज हमारी भट्टी में विशेष राजयोगी आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी पधारे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आत्म प्रकाश भाई जी करीब 55 साल से बाबा के इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं। साकार बाबा मम्मा की पालना ली हुई है। समझ सकते कितने साल बाबा मम्मा के साथ अनुभव किए होंगे। इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ते थे और बाद में दिल्ली में आप अपने जीवन समर्पित रूप से सेवा दे रहे थे। शायद आपको पता होगा कि 20 साल पहले दिल्ली में, जबकि हमारा यहाँ नीचे कोई ज्ञानामृत प्रेस आदि नहीं था, वहां एक चित्रशाला थी जहाँ हाथ से चित्र हमारे बोर्ड पर, प्लाई पर पेंट करते थे। और 20 साल पहले जब नीचे ज्ञानामृत प्रेस बनी, तब से लेकर आप पूरा ही प्रेस का कारोबार संभाल रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें ज्ञानामृत जो हिंदी इंग्लिश छपता है, और विंग्स के भी जो पत्रिकाएं मंथली व त्रिमासिक होती है वो भी छपती है, कुछ न कुछ छोटी बुक्स जो आपको भी सौगात में मिली ऐसी भी समय प्रति समय कुछ न कुछ छपाते रहते हैं। और हमारी जो बुक्स है, 7 डेज कोर्स है, प्रदर्शनी अंक है, सारा ही कारोबार नीचे हमारी प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ी चल रही है, वो कारोबार आप संभालते हो और ज्ञानामृत के आप संपादक हो। काफी स्टाफ वहां भी बाबा के बच्चे सेवाधारी रूप से सेवा दे रहे हैं। और आज हमें खास बाबा मम्मा के साथ आपके जो अनुभव है वो शेयर करेंगे। हम सब बड़े प्यार से, दिल से, बल बाबा मम्मा को देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है और अनुभव किया है वो अपनी बातें सुनाएंगे, तो जरूर हम भी उसमें मय हो जाएंगे, जैसे हम बाबा के साथ मम्मा के साथ ही है ऐसा अनुभव करते हुए सुनेंगे। तो आत्म प्रकाश भाई को निवेदन करते हूँ।
आपने देखा?
नहीं देखा के हमारे सामने आपका जो अमूल्य अनुभव है वो रखेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
हम बहुत ही, हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली है। बहुत सौभाग्य है कि कहां आप भट्टी कर रहे हैं, कौन सा स्थान है, विचार कीजिए, जहां स्वयं भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, और मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा जिसकी इतनी यादगार है, अपना सारा पाठ बजाया। मैं अभी बैठा था नीचे, नीचे शहर में बैठा था, तो देख रहा था जब बाबा, साकार बाबा थे, मम्मा थी, तो कच्चा मैदान था, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, ये बिल्डिंग्स कोई नहीं थी, ना ये हिस्ट्री हॉल था, शांति स्तंभ बाद में बना, ना पीछे वो था ट्रेनिंग सेंटर था, कुछ नहीं था, सिवाय ये टीन का जो है बाबा का, जहाँ बाबा रहते थे, मम्मा रहती थी, कमरे में यीशु दादी का ऑफिस था, कोई ये हाल नहीं थे, इसके बाहर तो बात ही मत पूछी। तो उस वक्त हम आए 1957 में आए, जबकि बहुत कम सेवा केंद्र थे, बहुत कम बच्चे थे, 1,000, 2,000 होंगे, सेवा केंद्र भी बहुत कम थे। और तभी बाबा ने हमको पकड़ा और अपना बना लिया। बहुत इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े लोग, लेकिन इतनी 7 बिलियन इंसान है इस वक्त धरती पर चल रहे हैं, उसमें हम कितने हैं, लाखों ही होंगे अभी, उस वक्त तो हजारों थे। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, बड़ा बहुत बड़ा सवाल, किसकी संतान है हम? प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, इनका सब धर्मों में गायन है। कोई एडम कहता है, कोई आदम कहता है, कोई बीबी कहता है, कोई उसको ईव कहता है, यानी सभी धर्मों में दो चीजों का तो बहुत गायन है, एक शिव एक गाड का, दूसरा उसकी जो माध्यम बने प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों इन तीनों का सभी धर्मों में किसी न किसी रूप से गायन है। तो हम उन्होंने हमें अपना बना लिया, केवल अपना नहीं बनाया और क्या किया, आप बाबा के बच्चे बन गए, केवल बच्चे थोड़ा बने हैं, अपना बना के बड़ा और सौभाग्य हमें किसी कार्य में लगा दिया, बहुत बड़ी बात है। भगवान ने, शिव बाबा ने अपना तो बनाया, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम भगवान के बच्चे ब्राह्मण हैं। देखिए अभी उस दिन जब पहला वो हुआ था, यानी अभी सीजन चला था, तो फर्स्ट एक दो दफा अव्यक्त बाप दादा नहीं है, तो मैसेज आया था अहमदाबाद से दादी बाबा का, बच्चे अमृत वेले क्या करो, तुम उठ करके जो प्राप्तियां तुम्हें आज तक हुई हैं उनको याद करो, याद करके खुशी मनाओ। मैं सोचा प्राप्तियां तो बहुत हैं, अनेक प्राप्तियां, अनेक खजाने मिले हैं, सबसे पहली बात मैंने सोची, और तो जो मिला तो मिला, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा मुख द्वारा हुआ है। हम पहले भागवत बच्चे थे, भागवत सुनते थे ना, भागवत कथा है उसमें है लिखा हुआ कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ऐसा कुछ है। हम सोचते थे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे निकलेंगे, प्रश्न था हमारा बच्चों का भी, कि ब्रह्मा के मुख से तो कुछ नहीं, ऐसे कैसे निकलेगा, वो तो संतान तो मुख से पैदा होती नहीं। तो अब कैसे मालूम पड़ा, बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा आधार दिया, उसके द्वारा हमको ज्ञान अमृत पिलाया और उससे हम पैदा हुए। तो ये जो बात थी, इसी एक बात को भी याद करके, किसकी संतान है, ब्रह्मा मुख वंशावली है, वंडरफुल बात है ये। तो हमें, हम भी ब्रह्मा मुख वंशावली, आप भी है। देखिए, एक तो बाबा ने अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया, साथ साथ हम कहते और सौभाग्य है, हम बच्चों के द्वारा, हम बच्चों को किसी कार्य में लगा दिया, हम क्या बन गए, ब्रह्मा की बुझाएं बन गए, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के हम मददगार बन गए, यानी उसके हम मददगार हो गए। तो क्या कहते हैं, दुनिया कहती है जो अपनी मदद करता है खुदा उनकी मदद करता है, और हम कौन है, खुदा के मददगार है, वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड, विचार करने की बात है। तो बताइए, बाबा हम बना हुआ है हम बच्चों को मदद करने के लिए। इसी हम उस वक्त 1957 में पढ़ते थे, मैं अनुभव सुनाऊंगा तो उसमें बाबा मामा का सब आ जाएगा। हमें ये कभी मालूम नहीं था जब बाबा मामा के साथ थे कि हमको कभी अनुभव सुनाना पड़ेगा। हम तो ये समझते, इतने अबोझ थे, इतने बाबा ने इतना पकड़ा हुआ था बुद्धियों को, कभी आज तक सोचा नहीं कि बाबा मामा ऐसे चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे, या इतना समय होगा कि हमें भी बाबा मामा के साथ का अनुभव सुनाना पड़ेगा, कभी विचार नहीं आया, किसी को भी विचार नहीं आया, चाहे हमारे भ्राता जगदीश जी थे, बड़ी बड़ी दादियां थी, दीदियां अब भी हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं कि कभी ऐसा भी मौका आएगा हमको बाबा मामा का अनुभव भी सुनाना पड़ेगा। हम तो समझते थे, गीता पढ़ी हुई थी ना, हे अर्जुन, सब मच्छरों माफिक मेरे, मैं उनको लेके जा रहा हूँ परम धाम को। हमने कहा बाबा मामा है, बाबा है, बस जब अभी विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, ऐसा लगता भी था उस वक्त भी। हम जब ज्ञान में है तो लगता था, कई प्रकार की लड़ाइयां थी, कई प्रकार के झगड़े थे, विनाश हुआ क्या हुआ, जैसे दादी जान के कहती है, बाबा कहते थे अगली दिवाली नहीं आएगी, रियली लगता था, ऐसे नहीं कि बाबा कह रहे तो हम उसको मान लेते थे, लगता था हाँ विनाश सामने खड़ा हुआ है। अब भी ऐसा लगता है, कभी भी विनाश हो सकता है, तो इस प्रकार से हम जब ज्ञान में हम आए पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम तो पहले बचपन में बहुत भक्ति की हुई थी, बहुत सारे भागवत रामायण महाभारत गीता हमारे लौकिक फादर कथावाचक थे, अपनी वैद्य भी थे और कथा सुनाते थे, हम भी उनके साथ साथ जाकर के सुनते थे सब ये चीजें जो हमारे धर्मशास्त्र है। तो हर बात हमारी बुद्धि में बैठी हुई थी, बड़ा इंटरेस्ट था, रुचि थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। लेकिन जूं जूं हम इन धर्म के जो ठेकेदारों के कनेक्शन में आते गए तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो गए, हाँ भगवान है या नहीं है हमें क्या लेना, उसमें तो कहा गीता में कर्म करो और कर्म की इच्छा मत करो, तो कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, यही अच्छी बात है। तो हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे तो इसमें क्या था, भक्ति छूटती गई, तो भक्ति छूटने से क्या हुआ, भक्ति में थोड़ा बहुत तो कोई असर रहता है, और जो बातें जो मन यानी मन में बुराइयां आनी शुरू होगी, अच्छी वो विकृतियां आनी शुरू होगी, तो जब विकृतियां आती हैं तो मन अशांत हो जाता है। भले हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, कोई प्रकार का कोई बात नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, परंतु इच्छा थी हमारी कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम लाइफ, जीवन में कुछ मिस है, ऐसा था। तो हमारे साथ एक भाई ओम प्रकाश, अभी जो इंदौर जोन के इंचार्ज हैं, वो भी साथ में पढ़ते थे, हमारा कमरा साथ साथ था, तो वो ज्ञान सुन के आए थे 6 मास के लिए। देखो हम कहते ना, हम भगवान को ढूंढ रहे थे, परंतु देखा या तो भगवान ने हमको आगे ढूंढा है। तो वो ज्ञान में थे, बड़ा वैराग्य था, वो कहते थे क्या पढ़ाई करनी है, विनाश तो सामने खड़ा है, पढ़ाई नहीं करनी है। उसके फादर कहते पढ़ो, तो बाबा ने पत्र लिखा उसको, बच्चे तुमको पटियाला में जाकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम्हारे लिए इस ज्ञान के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। यानी उसको बाबा ने भेजा हमको ज्ञान देने के लिए, ऐसा लगता है। तो हम पढ़ते थे तो आपस में मिलते थे, बात उससे देख के अट्रैक्शन होती थी। तो वो एक टॉपिक पहले शुरू किया, आप आत्मा है या शरीर नहीं है, हम वो सुनाते रहे, हम सुनते रहे, डिस्कशन चलती रही 5-7 दिन तक। वो कहे आप आत्मा है, हम कहे हम तो आत्मा नहीं है, क्या आपका प्रूफ है कि हम आत्मा है, ये तो शरीर है, इसमें कोई भी पुर्जा बिगड़ेगा, ऑर्गन खराब होगा तो खत्म हो जाएगा, जैसे मोटर होती है, मोटर में वो जो कोई चीज खराब हो जाए तो बैटरी अगर खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो चलेगी नहीं, उसको हटा देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ये चीज है, इसमें आत्मा की बात ही नहीं है। बहुत दिन तक डिस्कशन चलती रही, हम भी सुनते रहे, लेकिन आंतरिक हम मानते थे आत्मा तो कोई चीज है। एक दिन उन्होंने ये कहा कि आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है, तो मैं मानता तो था ही, मैंने कहा ठीक है भाई, आज हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, बस इतना ही मुझे कहना था। अभी जैसे कहा ना मैंने, मैं आत्मा हूं, कहते ही वो रियलाइजेशन शुरू होगी, अनुभूति शुरू होगी। भ्रकुटी में कहा आत्मा यहां निवास करते हैं, तो वो हर वक्त चलते फिरते खाते पीते बस यही ख्याल आता रहे कि मैं आत्मा हूं, जिसके देखे ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, बाजार में जाए कहीं भी जाए तो उसकी सबकी भ्रकुटी में देखे आत्मा आत्मा, जैसे वो उसका पक्का हो गया बात ये, और बड़ी शांति का अनुभूति, बड़ा आनंद आने लगा, खुशी आने लगी विद इन वन डे। जैसे उस वक्त अभी तो बहुत बाबा के बच्चे, उस वक्त बाबा के बच्चे कम थे, तो बाबा को जैसे फुर्सत दी बच्चों को खींचने की, ये बात भी है, जैसे बाबा खींच रहा है, पकड़ रहा है, ऐसा लग रहा था। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, पिक्चर देखना बंद हो गया, लोगों से बातचीत, अपने दोस्तों से बातचीत करना भी बहुत खत्म हो गया, लगभग शांति में जैसे चले गए, अनुभूति होने शुरू होगी। हम कोई वो सर्वेंग करते थे तो कुछ बात नहीं, अपने शांति में काम कर रहे हैं, वो देखता था इसको क्या हो गया, ये लोग भी कहते थे आप लोगों को इसको हो क्या गया है। बस फिर हमने कभी और हमें ज्ञान सुनाइए, वंडरफुल डाले, तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। उनने 2 दिन में सब ज्ञान सुना दिया, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर, राम कौन है, रामन कौन है, कंस कृष्ण, सब बातें 2 दिन में सुन ली, और इतनी अच्छी लगी नॉलेज, वंडरफुल लगा, ऐसा लगा ये वंडरफुल नॉलेज है, रैशनल है, प्रैक्टिकेबल है, एक्सपीरियंसेबल है, बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत मजा आ गया। उसी ज्ञान से ही हमारा जो जीवन है बदलना शुरू हो गया, बहुत खुशी आ गई, कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो कैसे पूछो, वो गोपियों से केवल योग से नहीं, वो दिखाते हैं ना, वो विष्णु को दिखाते हैं ना, वो सागर में लेटा हुआ है और वो मुस्कुरा रहे थे, तो लक्ष्मी ने पूछा क्या क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे, कोई कमी है मेरे में? कहता नहीं, मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके मुस्कुरा रहा हूं। तो ये गीता ज्ञान है, इतना वंडरफुल लगा, इतना खुशी आ गई ज्ञान से, सारा चीजें बदल गई ना, जैसे मोह भी नष्ट हो गया, कुछ जैसे बिल्कुल परिवर्तन हो गया उसी वक्त। तो मैं तो आश्चर्य खा रहा था, मैं क्या मुरली सुननी शुरू कर दो दिन में, ऐसा लगे मुरली मैंने पहले सुनी हुई है, कुछ सब बातें बिल्कुल, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, वंडर लगा। तो वो भी आश्चर्य का कि इतना जल्दी कैसे परिवर्तन आएगा, और हमारे स्टूडेंट भी कहते थे तो व्हाट यू हैव बिकम, आदर यू हैव बिकम ए सेंट आर ए बीस्ट, कोई सेंट या बीस्ट जंगल में रहते हैं, या तो साधु सन्यासी रहते हैं या जंगली जानवर रहते हैं। हमने कहा नहीं, आई एम बिकमिंग सेंट। इस प्रकार से हम 7 दिन के अंदर अंदर कुछ कोई खींच रहा है, बाबा से मिलने पहुंच गए दिल्ली में, अब बाबा मम्मा की बात शुरू होती है। तो हम पहली दफा कैपिटल था दिल्ली में गए, रात्रि के 11 बजे पहुंचे, ऐसा लगा हम अपने अपने घर जा रहे हैं। वहां रजौरी गार्डन में पहुंचे थे तब बाबा मम्मा वहीं आए हुए थे, क्योंकि वो सर्दियों में आमतौर पर के यहां बहुत सर्दी होती थी, बाबा या दिल्ली आते थे या बॉम्बे आते थे तब। तो वहां हम गए अपने जैसे घर में पहुंचे ऐसे पहुंचे, सुबह उठे क्लास हुई, बाबा मामा से मिलना हुआ, ऐसा लगा बाबा मामा से जैसे मिल रहे हैं जैसे अपने लौकिक जो होते हैं ना संबंधी या माता पिता उससे मिल रहे हैं, अपने ही हैं, जैसे हमारे अपने हैं, ऐसी भाषा उनको देख करके। बाबा को देखा चमकता हुआ चेहरा और ललाट बड़ा चौड़ा, और जैसे उसमें शिव बाबा बैठे हैं ऐसे देखने में आया। मम्मा देखी जैसे जगदम्बा माँ है सबकी, वो फीलिंग हमको आई। हमें किसी ने नहीं कहा था कि बाबा मामा से मिलना कैसे होता है, बताया नहीं था, हम तो अभी थोड़े थे, उनको थोड़ा पता था कि ये अभी जल्दी जाने वाला वहां पर मिलने के लिए। सीधे बाबा की गोद में गए, मम्मा की गोद में, उन दिनों में सभी बाबा मामा की गोद में जाते थे, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कन्या हो चाहे माता हो कोई भी हो, सभी बाबा मम्मा की गोद में जाते थे, ऐसे मिलते थे। बाबा थपथपाएंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, पूछेंगे कुछ सुनाएंगे, और तो फिर उसके बाद सामने बैठे टोली खिलाएंगे। तो पहला वरदान जो हमको बाबा ने दिया, आप सुन के आश्चर्य कहेंगे, हम तो शायद बाबा हमारी जो जन्म पत्री को जानते थे, पहले बाबा ने कहा, देखो क्या कहा, कि बच्चे तुम इंजीनियरिंग पढ़ते हो ना, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं। देखिए ये बाबा के वरदान थे हमारे प्रति, क्योंकि जानते थे बाबा कि ये पढ़ाई कर रहा है। हम समझते जब विनाश नजदीक है क्या पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कैसे काम आ, हम तो ये समझा था कैसे पढ़ाई काम आएगी। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं पढ़ाई करते, अगर आप बाबा आप कहते हैं किसी ईश्वरीय धंधे में लग जाओ। ये बाबा ने उसी वक्त कह दिया, 1957 की बात है। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो फिर भी लेकिन लौकिक माता पिता की इच्छा थी कि हम इंजीनियर बने, उस वक्त इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को, इंग्लिश में लेटर लिखा, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। कहो तो मैं आपको सुनाऊं, मुझे याद है वो, मैंने बाबा को लिखा इंग्लिश में, बाबा आई डोंट वॉन्ट टू बिकम डिजाइन बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स, बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एडिफिस यू आर इरेक्टिंग। यानी जो आप एक बहुत सुंदर महल सतयुगी बना रहे हैं, जो वो उसमें मैं एक पत्थर बनना चाहता हूं, ना कि मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूं। इंजीनियर काम होता है बिल्डिंग बनाना। फिर मैंने बाबा को लिखा, बाबा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज रोड्स, क्योंकि इंजीनियर करते हैं, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परम धाम एंड देन गोइंग टू सत्य गोल्डन एज। फिर लिखा बाबा को, बाबा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ ए किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी। बाबा उन दोनों में कहते थे, अब भी मुरली में आता है, ये सारी किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, उसमें एक पुर्जा बनना चाहता हूं। तो बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया, बहुत जल्दी जवाब आया, चाइल्ड बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू को इंजीनियर्स एंड टू योर फैमिली। अपने पेरेंट्स को ज्ञान दो, साथ साथ जो ये आपके इंजीनियर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ज्ञान दो। तो शुरू से हमने समझा हमारे ये माँ बाप हैं, जो वो कहते थे हम उसको पालन करने की कोशिश करते थे, कुछ भी कहा। तो हमने क्या किया, जो इंजीनियर्स थे हमारे उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया, अपने प्रोफेसर को लेटर लिखने शुरू कर दिए, अपने जो हमारे फ्रेंड्स थे जो पहले उनको भी लेटर्स लिखने शुरू कर दिए, तो कईयों के रिस्पांस भी है। तो वो हमने किया, हम क्या कहते, उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, आप जानते हैं, बहुत पहले ज्ञान नंबर से पहले एक त्रिमूर्ति मैगजीन थी, उसमें उस मैगजीन ऐसी थी कि उसको एक पेज खोलोगे ना आप, क्या लिखा होगा, परमात्मा सर्वव्यापी, दूसरा खोलोगे गीता का भगवान श्री कृष्ण, तीसरा खोलोगे गीता पतित पावनी गंगा नी, फिर खोलोगे 84 लाख दुनिया नी, सब ज्ञान की बातें थी, कोई ये धारणा या ये अनुभव वगैरह जैसे आजकल होते हैं वो बात, सब ज्ञान की बड़ी बड़ी जैसे ना तीर लगाने वाली बातें थी। हमने ली, खरीद ली 10-20-50 लेकर के हम बस पे बैठ जाते थे, जहां हमारे लोग, हम पहले वो जाते थे, अगर पिक्चर आई है तो दूसरे शहर में पिक्चर देखने जाते थे, भाई पहले हम देखे, तो हमारे स्टूडेंट्स भी जाते थे वो लोग, पहले हम उसी बस में बैठ जाते थे, सारे स्टूडेंट्स को बांट देते थे, लो भाई पढ़ो इस बात, वो पढ़ते थे बेचारे, वो जो खोले ये क्या नई नई बातें हैं, सर्वव्यापी नहीं, आज तक दुनिया ने कभी किसी ने कहा नहीं सर्वव्यापी नहीं, तो ये सर्वव्यापी नहीं गीता का भगवान। फिर हम उसको नीचे उतर कर सब इकट्ठी कर लेते थे, दूसरे आउट पर एंट्रेंस में देते थे और नीचे खड़े सब उनसे वापस लेते थे। मैं कोई ना कोई पूछते थे भी क्या बात है, ये कहते ये क्या ज्ञान है आपका, मैंने कहा बताओ आप, अब मेरे से डिस्कस करो, वो जो भी डिस्कस करते थे, इतनी हमारी बाबा ने फोर्स भरी हुई थी, हम जो समझाए उनको समझ आया था, बात तो राइट है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है, ये उसको मार रहा है, ये झगड़ा हो रहा है, किसी को कत्ल किया जा रहा है, जैसे बाबा जैसे आर्गुमेंट्स देते हैं, तो फटाफट वो समझ जाते थे, ऐसे हमारे स्टूडेंट बन जाते थे क्लास के। तो हमने हॉस्टल में ही जाकर के एक कमरा अपना था, उसमें लाल बत्ती जला करके ग्रामोफोन ला करके, होता नहीं वो होता था आजकल तो टेप है, ग्रामोफोन होता था, वो थाली होती थी उसमें सुई लगाते थे, वो बाबा के रिकॉर्ड बजाते थे, वो क्या ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें, ऐसे ऐसे गीत उन दोनों में होते थे, तू प्यार का सागर है, वो सब बजा करके वहीं क्लास करते थे अपने स्टूडेंट पे। वार्डन ने कहा तुम लोगों को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, तो हॉस्टल छोड़ करके हमने फिर अपना आश्रम कमरा लिया, बड़ा वो जगह ली, तो मम्मा से कहा, मम्मा से मिले, मम्मा हम तो अब कैसे करेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं, तो मम्मा ने कहा कि देखो तुम तो कुमार हो, कोई युगल निकलेगा तभी तो हम कोई बहन भेज सकते हैं, भाई कुमारों के पास कैसे बहन आएगी, तो हमने फिर कोशिश की, फिर कोई युगल निकला, तो सेवा केंद्र से चालू होते गए। तो हम दूसरी बार बाबा से मिलने आए, मम्मा से मिलने आए, तो एक दफा मम्मा के क्या होता, पहले क्लास के बाद मम्मा बाबा जब दिल्ली में होते थे तो वो घूमने जाते थे दूर तक क्लास के बाद, फिर आके नाश्ता करते थे। तो मम्मा से माने एक जो हमारी ब्राह्मणी थी जो हमें बाबा मम्मा से मिलाती थी, हमें अभी तक पता नहीं था ये कैसे चल रहा है, चाय पिला रहे हैं, टोली खिला रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ दे रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे भागवत है, वहां पर भागवत पुराण रिपीट हो रहा है, जैसे सब गोप गोपियां सब दादियां भी बहुत यंग थी, ऐसे नहीं कुछ वो आजकल के बुजुर्ग थे यंग थे, जैसे भागवत जो हम सुनते थे, भागवत में जो सीन थे, बाबा मामा मिल रहे हैं, कहीं रास हो रही है, कुछ सब प्रकार के ऐसे होता था। तो हम कहते थे, पूछा मम्मा से, मम्मा ये चल कैसे रहा है, ये कहां से, ना कोई भंडारी होती थी वहां पर, कोई किसी को इशारा भी नहीं कर रहा भाई कुछ इसमें डालना या देना है, कुछ नहीं। तो मैंने पूछ लिया किसी एक बहन से, एक भी थी वो लीला चटनी थी, एक अभी आके सिकंदराबाद में शरीर छोड़ दिया उसने, कैसे चल रहा है। तो मम्मा ने क्या कहा होगा बताओ, मम्मा ने कहा ऊपर से चलता है। और हम थोड़े छोटे अभी 7-8 दिन के हुए थे, 15 दिन होंगे, हमने कहा हो सकता है, क्योंकि उन दिनों में 2 बार भोग लगता था, उन दिनों में एक संडे को और एक गुरुवार को। हमारे पास ध्यानी दादी, आपने कभी देखा हो सुना हो, वो आती थी स्पेशल पटियाला में आकर भोग लगाती थी, वो देखते थे अभी ऐसे हाथ कर रहे हैं, कभी हमको फूल दे रहे हैं, नयों को कभी कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो ऊपर मम्मा कह रही है तो जरूर ऊपर से कहीं से आता होगा जरूर। तो इस प्रकार से कभी भी कहने का मतलब यह, कैसे भी कुछ कमी थी, उस वक्त तो पार्ट बेगरी पार्ट था लगभग, इतना तो कुछ था नहीं, फिर भी कभी भी मम्मा बाबा ने आज तक कभी किसी को इशारा तक भी नहीं करते थे, ये स्टैंडर्ड था उस वक्त का। तो इस प्रकार से बाबा मामा से मिलते मिलते दूसरा बाबा ने कहा था लौकिक परिवार को ज्ञान दो, तो हम लौकिक परिवार के पास भी गए, छुट्टियां थी वहां पर गए, अपने माताजी को पिताजी को सारे गांव वालों को ज्ञान सुनाया। वो ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल है, ज्ञान उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमारे माताजी तो फटाफट ज्ञान में आ गए, हमारी बात मानने लगे, धारणा शुरू कर दी। मैं लोग के पिताजी तब आज से 60 साल पहले, कितने 55-56 साल पहले की बात है, तो पिताजी बड़ी भक्ति बहुत करते थे, श्री कृष्ण के बहुत भगत थे। उनने कहा आतम जी आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, वंडरफुल लगता है, लगता है रियल, लेकिन मुझे एक शर्त है, अगर आपका बाबा, देखो क्या उनने शर्त रखी, मुझे कुछ दिखा दे यानी साक्षात्कार करा दे तो तब मैं मानूंगा। मैंने कहा भी मैंने आज तक किया नहीं, मुझे तो हुआ ही साक्षात्कार कभी आज तक, हमारी इच्छा, बाबा कहते साक्षात्कार कुछ नहीं है, बाबा एकदम कट कर देते थे, तो मैं कैसे कराऊंगा। और यहां आपने बाबा को नहीं मिले, मम्मा को नहीं मिले, अभी किस सेंटर पर नहीं गए, अभी बस केवल चित्र थे, मूर्ति जहाज देखा, तो अब कैसे मिले। अच्छा मैंने कहा चलो हम भी वहां भोग लगाते थे, गुरुवार का दिन था, चलो भोग में लगाते हैं, बनाया हलवा बनाया, बैठे सारे बैठ के, कुछ गांव वाले भी एक दो चार बैठ के। तो वो क्या हुआ, देखो बाबा क्या करामा दे, कृष्णा हम बताएं आपको, ये ध्यान का पार्ट है, ये काम नहीं है। बोले बाबा इसको कट करते हैं। मैंने एक दफा बाबा को कहा कुछ दिन बाद, बाबा हमारा लोके पिता ये ध्यान में जाता है, बड़ा खुशी खुशी का। बाबा ने कहा अच्छा है, बाबा ने बहुत ध्यान देखा हुआ है, अपने बाबा को बहुत साक्षात्कार हुआ था ना शुरू शुरू में, तो उसको इतनी वैल्यू नहीं दी। लेकिन मैं कहता हूं ध्यान के पाठ से सारे हमारे यज्ञ की कई बातें क्लियर हुई हैं शुरू से, ब्रह्मा कौन है, अव्यक्त ब्रह्मा क्या है, सारी बातें संदेशियां ले लेकर के इस ध्यान के पाठ से बहुत कुछ हासिल किया है। तो जब वो ऊपर, जब हम भोग लगाने बैठे, शिव बाबा को ऑफर करने बैठे, उठ के खड़े हो गए वो कुछ समय के बाद, अभी ना बाबा से मिले थे ना मम्मा से मिले थे, कभी किसी बहन को देखा भी नहीं था। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, चलो कुछ हो रहा है, देखो क्या करते हैं ये। उठ के खड़े हो गए हमारे लौकिक पिता, बुजुर्ग 50-55 साल के थे, और बच्चों की तरह किसी को पकड़ रहे हैं, कभी ये पकड़ते हैं, फिर यहां पकड़ते हैं, फिर यहां पकड़ते हैं, पकड़ रहे हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा मुझे फीलिंग आई। तो कुछ देर के बाद फिर वो नीचे आ गए, जिसे फिर वहीं बैठ के, और बड़े उदास थे वो। मैंने पूछा जी क्या हालत, मैं खुश था भी, क्या देखा आपने। कहते हैं मैं कहीं ऊपर गया और मुझे छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण 5-6 साल का 4 साल का देखने में आया, बड़ा सजा सजाया, और उसका वो भगत था ही। मैं उसको जहां पकड़ता हूं, जहां पकड़ू वहां चला जाए, वहां पकड़ू वहां चला जाए, छोटे बच्चे को मैं पकड़ नहीं सका। मैंने क्यों, आप तो बहुत बड़े हैं, वो छोटा था। कहता मेरे हाथ में नहीं आया। फिर क्या कहा, फिर आपके, मुझे कहता आपके बाबा फिर दिखाई दिए, ब्रह्मा बाबा। उसने कहा बच्चे अगर तुम धारणाओं पर चलोगे और निश्चय बुद्धि होगे तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, पर ठीक है, उनने सब मान लिया, सब धारणा तो थी, फिर भी जो कुछ कमी बेशी थी उनने ठीक कर ली। उसके बाद फिर अगले गुरुवार, अगले संडे को ही फिर हम फिर भोग ऑफर किया बाबा को, बम्बई थे, समर वेकेशन थी, फिर वो ध्यान में गए, ध्यान में गए, फिर श्री कृष्ण को देखा, उनकी गोद में आया, उनके बड़े आंसू आए, बड़े खुश हुए, सारी जो उसकी उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी उसने, वो रात रात भर भागवत पुराण को पढ़ते पढ़ते अपने रख लेते थे, इतनी भक्ति करते थे। और बहुत सात्विक थे, बड़े रहमदिल थे, वो वैद्य भी थे, किसी को दुख देने वाले नहीं थे, ऐसे अच्छे नेचर वाले थे, भोले भाले थे बाबा के, बड़े पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, बड़े भोले, कहते भोलों का भगवान होता है, भक्त बत्सलम उनको बाबा को गाया हुआ है, बाबा पूरे भक्त बत्सलम थे, देखा हमने, भोले भाले गांव के, कोई ज्यादा वो भी नहीं, चलाकी नहीं, कुछ नहीं, उनको बाबा ने पकड़ा करके। तो बड़े खुश हुए, कहते हाँ ठीक है, अब तो बिल्कुल ठीक है, मुझे आप, मैं उनको योग की सारी कमेंट्री लिख देता था, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, सारा लिख करके, परम धाम साहब बता करके, वो चलते फिरते वो रिवाइज करते रहते थे। तो बड़े खुश हुए, तो ज्ञान में आ गए, उसको देख करके इतने अच्छे संदेशी बन गए, जब वो मधुबन में आते थे तो मम्मा उनको बिठाती थी, जब कम होते थे ना लोग, भाई भोग लेके जाओ, प्यारे लाल उनका नाम था, भोग लेके जाओ। तो लेके आते थे बहुत, बाबा मामा के, बाबा मामा ने उनको बहुत प्यार किया क्योंकि बहुत भोले थे वो। तो इस प्रकार से हमारा पूरा परिवार, हम तीन चार भाई, एक भाई तो रीव, चार भाई, सिस्टर, माता पिता, सब आसपास के लोग जो थे इसी एक बात को देखकर ही ज्ञान में आ गए, कहते कमाल है, हम उनको कहीं कुछ संदेश लेके जाओ, वो संदेश लेके आएंगे, इतना अच्छा सुंदर संदेश लेके आए, वो लेके आएंगे बाबा से, हम आश्चर्य खाते थे, अज्ञानी लोग भी आश्चर्य खाते थे, हम बताएं आपको। तो ये वंडर देख करके हमारा सारा लौकिक परिवार ज्ञान में आ गया, यहाँ तो भगवान का कार्य चल रहा है। हमारे लौकिक भाई थे लक्ष्मण जी, अब भी हैं, बहुत वो थे, वो हमें जो पढ़ा, हमें जो शिक्षा देने वाले, पढ़ाने वाले थे, लेकिन उनका, उनको देख के वो भी ज्ञान में आ गया, सारा परिवार ज्ञान में आ गया 1968 से। तो लगभग सभी समर्पण है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। हमारी माता जी अभी तक भी जिंदा है, उनकी एज जो है 108 साल है, हम बताए, वो हम नीचे रहती है माता जी हमारे, अभी भी वो गीत गाती है बाबा को, बहुत गीत सुनाती है बाबा के। अभी उस दिन दादी जानकी ने सुना, कहा आओ उनको लेके आओ, सारी क्लास को गीत सुनाया अपनी लैंग्वेज में, सदके जामा में मुरली दे सुनान वाले, यानी मैं आप ऐसी जो मुरली सुनाने वाला है उसके पर सदके जाती हूँ, उस पर बलिहारी जाती हूँ, सुनाती है। तो इस प्रकार से हम चलते रहे, 4 साल इंजीनियरिंग पास कर ली, और इसी बीच में बहुत सेवाएं हुई, सेवा केंद्र खुले, बाबा हम उसके पटियाला के कुमारों का बहुत नाम लेते थे, बड़े हैं, हमारी सगाई हो चुकी थी, हमने उनको कहा कि हम तो पवित्र रहेंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब पवित्र माने नहाना धोना, ये समझते हैं पवित्रता वो दुनिया वाले, तो देखा इनका भाई भी लोग ज्ञान में आ गया, पवित्र रहना शुरू कर दिया, सब पवित्र और बात है, कुछ प्योरिटी माने वो कुछ और समझते थे, उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि अब हम चाहते नहीं कि यहाँ पर शादी हो, छोड़ दिया, सगाई अपने आप तोड़ दी। तो बाबा का मुरली में आया, हम बोलता देखो पटियाला कुमार कितने जबरदस्त हैं, मुरली में मुझे याद आया था उस वक्त। इस प्रकार से चलते रहे, इंजीनियरिंग पास कर ली, पता नहीं कैसे पास हुई, हम बताएं आपको, उन दिनों में कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी प्रदर्शनी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पढ़ाई में इंटरेस्ट क्या होता है, जो इसको बाबा भगवान पर निश्चय हो जाए, अरे भगवान आया हुआ है, शिव बाबा आ रहा है, ये सारा भगवान का कार्य चल रहा है, क्या उसका, हमारा तो दिल लगता था पढ़ने में। अब बात और है, अब तो मेरा बहुत लंबा टाइम हो गया ना, भगवान को आया भी काफी लंबा टाइम, और थोड़ा ढीला हो गया है, लेकिन उस वक्त तो कहा नहीं, अभी हुआ विनाश के हुआ, तो हम बताएं आपको, ऐसा लगता था हुआ, क्योंकि उस वक्त स्वेज कनाल का झगड़ा था, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई, ऐसा लगता है विनाश लड़ाई हुई कोई, ऐसा हमको फीलिंग होता था। 1957 में हम कहते 100 साल बीत गया है, 1857 में हुई थी ना वो लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई, फिर 1957 100 साल के बाद लड़ाई होती तो अब होगी, ऐसा जबरदस्त निश्चय था। तो उससे क्या हुआ, हम फिर बाबा के पास पढ़ाई, हम पढ़ने जा बहुत पढ़ते थे, लेकिन मालूम नहीं बिगर पढ़े, बिगर अटेंड किए क्लास, हफ्ते में एक दफा जाएंगे, वो बोलेगा प्रोफेसर AP मेहता मेरा नाम था, मैं यस सर, सारी क्लास हंसती थी, देखो कौन आया है, हफ्ते के बाद आया प्रिंस आए हैं, देखो कोई इनको इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, बताओ लोग इंजीनियरिंग की बड़े वो करते हैं, हमें इंजीनियरिंग क्लास वो एडमिशन मिले, हमारा कुछ इंटरेस्ट था, किस इंटरेस्ट आई टेल यू, एक बाबा उसी में लगे हुए थे। तो जब हम पास हो गए मालूम नहीं कैसे, हम बताएं हम आपको कि हम जब चौथी जमात से लेकर के 8वीं 10वीं 12वीं तक स्कॉलरशिप होल्डर थे हम, स्पष्ट कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में हम जब आए, जब बाबा का ज्ञान मिला, भले आप कहेंगे ये ठीक है अगर अच्छा है कि नहीं है, हम पास, आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, सारी यूनिवर्सिटी में सबसे आखिरी स्टूडेंट मैं था जो पास हुआ, क्यों, हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हम तो बाबा के उसमें लगे रहते थे और काम था नहीं कुछ, भाई क्या करना है हमको पढ़ाई करके, बाबा बैठे हमें वो संभालेगा, इसमें क्या बात। फिर भी हम बाबा के पास आए, इंजीनियरिंग पास डिग्री हमने ली, हम डिग्री लेने नहीं गए आज तक गए, हम क्या डिग्री लेने जाएंगे, वो चोगा पहन के डिग्री लेते हैं ना, कि हम क्या समझते हैं, हम समझते थे आई शुड नॉट हैव एनी ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन, मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए किसी का, एक शिव बाबा के अगर सहारा ले लेंगे जमीन का उसका तो ऊपर लटकेंगे कैसे, उस जमीन पर अगर किसी चीज का सहारा मिल गया, मैं तो मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा तो मकान है, मैं तो डिग्री होल्डर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, तो थोड़ा बहुत तो खिंचाव होगा ना उसकी तरफ, हमने डिग्री लेने भी नहीं गए, हमने वो लोग भी कहेंगे जो यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं आदमी जो जिंदा है कि चला गया है, डिग्री लेने भी नहीं आया बताओ लेने के लिए। तो उसके बाद हम बाबा के पास आए, बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो तुम्हें कहा था, याद था बाबा को, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो हमको कहां भेजा पता आपको, हमको भेजा भ्राता जगदीश जी के पास वहां पर दिल्ली में कि जाओ बच्चे इसमें उनकी मदद करो, ट्रेनिंग लो। जगदीश भाई भी कहे एक इंजीनियर आदमी मुझे भेजा क्या बात है, लेकिन बाबा जानता था भविष्य हमारा, ही बस त्रिकालदर्शी बाबा। हम कहते बाबा कहते मैं जानता नहीं किसी को, नहीं बाबा भृगु ऋषि सब जानता है कि इस बच्चे को क्या कार्य देना है। तो हमने 4-5 साल ट्रेनिंग भी ली, फिर उस काफी क्या क्या काम करा हम। सुबह जाते थे कमला नगर सेंटर था ऊंचा बहुत, वो 4-5 मंजिल वहां रहते थे, धूप होती थी कुछ उतर था, साइकिल चलाते थे सुबह सुबह सारी दिल्ली में घूमते थे, अभी यहाँ प्रेस में जाओ वहां प्रेस में जाओ, सब कुछ देखा। और खाना साथ मान के जाते थे, हम कहते तारों की छांव में जाओ तारों की छांव में वापस आओ, इतना घूमते थे। और प्रिंटिंग कराते थे, बाबा कहते थे बच्चा ये चीज छापवानी है, फटाफट छप के उनको बाबा को भेजते थे जगदीश भाई, हम साथ उनके मददगार थे। तो बाबा ने वहां भेजा हमको, फिर कुछ समय के बाद कहते ना बच्चों के लिए काम सेवा बाबा निश्चित करती है, ये प्रदर्शनी बनी बॉम्बे में, सीढ़ी का चित्र इन्वेंट हुआ, निर्वैर भाई ने सब रमेश भाई ने किया, तो हमारे पास स्लाइड आई, हमने देखा अच्छा लगा, हमने फटाफट हमने एक सीढ़ी का चित्र बनवाया दिल्ली में आर्टिस्ट से, अकल तो थी थोड़ी बहुत, तो लेकर के बनवा करके उसको प्लास्टिक लगा करके फ्रेम करा करके दादा विश्वकिशोर और बड़ी दादी प्रकाश बनी उनके द्वारा बाबा को भेज दिया। बस उस बाबा चित्र को देखते ही बहुत खुश हुए कि देखो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो उसी दिन से पत्र बाबा के आने शुरू हो गए, बस फर्स्ट पहले भी आते थे लेकिन थोड़े कभी कभी पत्र है, बच्चे ये करो ये बनवाओ वो बनवाओ इस पे ये करेक्शन करो वो, अभी तो नहीं पहले मुरली में बहुत आता था सीढ़ी में ये एडिशन करो वो एडिशन करो। तो बाबा के लेटर आने शुरू हो गए तो हमें तो बड़ा खुशी होगी। तो हमने फिर एक स्टूडियो बनाया, चित्रशाला बने, हमको लौकिक बाप से वर्षा कुछ मिला था, एक स्टूडियो खोला, 3-4 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए और नए नए चित्र बनवाने शुरू कर दिए, ये जो आत्मा का चित्र है शिव किरणों वाला, कई प्रकार के चित्र नए नए बनाए बनवाने, बाबा ने टच किए बनवाने के लिए। तो हम फर्स्ट टाइम 20 चित्रों का सेट लेकर के बाबा के पास ये हिस्ट्री हॉल में आए, फर्स्ट टाइम चित्रों का लेकर आए। और बाबा और दीदी थे शायद उस 1965 होगा 4 होगा, तो चित्र रख दिए। मैं क्यों सुना रहा हूं कि कैसे बाबा उमंग उत्साह दिलाते हैं, हमको क्या सीखना है उनसे। चित्र बाबा और मम्मा या दीदी आए, सब देख करके बड़ा अच्छा लगा, कोई करेक्शन दी कोई डायरेक्शन दी सब बताया, और हमको फिर अपने कमरे में बुलाया। कमरा देखते ना अभी भी वही गद्दी वही है, बिस्तरा वही है, चारपाई और सब चीज वही है, बाबा का ट्रांसलेट रखा, पहले यही कमरा था और छोटा था आधा कमरा था। हम गए बाबा के पास, बाबा गद्दी पर बैठे थे, मुझे कहा बच्चे आओ गद्दी पर बैठ साथ, मैं तो छोटा, मैंने कहा साथ, मुझे संकोच कर रहा था। बाबा ने बिठाया और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, एक ये क्या कहे वरदान उच्चारण किया, देखो आप सभी के लिए हमारे लिए भी है, और उससे बहुत काम हुआ। बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी, वहां कहां है सत्युग में। अब देखो आप बाबा की सेवा जो इसी एक महावाक्य से, इतने एक वरदान से बहुत सेवा हुई, उमंग उत्साह बाबा ने बढ़ा दिया। क्या हम छोटा सा कार्य कर, इतने हजारों आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े वो पढ़े हुए लोग, लेकिन हम छोटा सा कार्य करके बाबा ने कहां से कहां क्या बात कही, कितना बड़ा बात है। जो बाप की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी, किसकी गद्दी, ब्रह्मा बाबा की गद्दी, शिव बाबा की गद्दी, हम बच्चों की है, और फिर यहां भी संभालोगे तो वहां भी संभालो। बड़ा उमंग उत्साह आया, मैं कहता हूं उसके बाद तो हजारों चित्र बने, प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, फेयर बने। जब तक ये कंप्यूटर नहीं आया था तब तक वहां सब हाथ से बनाया करते थे, सब एक एक चीज, और नए नए चित्र। बाबा कहते हैं ये मैं भी देख रहा था, ये बाबा के दिनों का बताया हुआ है कि पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज वो तब वहां बना, बाबा को दिखाया, बाबा को अच्छा लगा था, इसमें वो आर्टेशन कर दिया है, वो इंदिरा गांधी जी पर्स निकाल रही है, इसमें था पहले, अब वो निकाल दिए शायद, यानी पहले डबल क्राउन, फिर सिंगल क्राउन, फिर नो क्राउन, फिर पर्स भी निकाल दिया, ऐसा बाबा ने कहा था बनाओ। तो जो बाबा कहते थे हम बनाते थे, बाबा को दिखाते थे। एक दफा क्या था, किरण वाला चित्र नया नया निकला था, नया निकला था उस वक्त, पहले किरण वाला, पहले हम गोल बनाते थे ओनली ओवल शाइप, उसको प्रिंट भी कराया था गोल हमने, याद है मुझे, उसमें फिर का स्टार लगाओ, फिर स्टार लगाया हाथ से बैठ करके, फिर सबको फ्रेम करा के लोग उस वक्त वही लेते थे। तो फिर किरण वाला बना, तो एग्जीबिशन में पहले मथुरा गया, तो बाबा को मालूम पड़ा कि चित्र नया बना है और किरण वाला बहुत अच्छा है, उनकी फोटो बाबा के पास पहुंची। बाबा ने पहले मुरली में बहुत तारीफ की, बच्चों ने बहुत विचार सागर मंथन किया है, बहुत अच्छा किया है, बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं। फिर बाद में क्या बोला पता है आपको, बच्चे बेबीज हैं। क्यों बोला बेबी बताओ, बच्चे बेबी हैं क्योंकि मुझे दिखाने के लिए नहीं आए, तो हम फटाफट वहां से बाबा को दिखाने के लिए आए। इस प्रकार से बाबा से चेट चैट होते हुए, बाबा से बाबा के संग खाते पीते बहलते टहलते टोली खाते छत्र छाय में बैठे 12 साल ऐसे बिता दिए और मौज मस्ती में रहे, कोई वो नहीं। जब हमें वो मिला वर्षा बाबा लोग के पास से, बाबा ने कहा बच्चे बैंक में रख दो, मैंने बाबा आपने अपना बैंक में क्या रखा है, जितना इतने इतने आपकी धनाढ्य थे आपने सेवा में लगा दिया, हम क्या करेंगे। तो ये देखा हमने, जब जो सेवा में लगाता है कभी भी उसको कमी नहीं रहती है। हम बयात बताएं आपको, जब से वो सेवा में लगा हमेशा हमारे कोई कमी आने की बात नहीं है, हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से सेवा ऐसे होती रही। तो इससे क्या हुआ कि हम चलते रहे वहां पर, बाबा अव्यक्त हुए और मम्मा भी पहले वो अव्यक्त हुई, उन्होंने अपना वो इसकी तबीयत खराब हुई तो हुआ। इस प्रकार से फिर भी कभी निश्चय में भाई क्या होगा कैसे होगा, हम तो पहले ही कहते थे, हम बताए अब भी कहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया को संदेश देना है टाइम लगता है, अभी बने हम क्या है, विचार कीजिए। बाबा कहता है बाप मेरे समान बनो, आप बताइए ये हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा क्या लक्ष्य है इस वक्त, ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है, वो फ्यूचर लक्ष्य तुम लक्ष्मी नारायण बनना है, अभी लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। तो भाई बाप समान शिव बाबा जैसे तो बन सकते नहीं, वो तो बेहद का मालिक है, लेकिन कहते कम से कम ब्रह्मा बाप समान तो बनो, ये हमारा लक्ष्य है। तो विचार कीजिए, हैं ब्रह्मा बाप समान, बोलो कहां है, गैप है कुछ, फासला है कि अभी बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, बहुत फासला है। हम बताएं आपको, पुरुषार्थ किया जा रहा है। बाबा कहते देखिए मैं सोचता हूं, पहले हमारे हमने बाबा कर्मातीत फरिश्ता बन गए, एकदम कंप्लीट प्योर ट्रांसपेरेंट, कुछ कमी नहीं, कंप्लीट बन गए। तो देखिए हमने वो कर्मातीत बनना है, देखो उस दिन मुरली में था बाबा ने एकदम फुल पास हुए, जब अव्यक्त हुए उस वक्त आधा घंटा पहले एक घंटा पहले उनके मुख से क्या निकल रहा था, अमृतवाणी निकल रही थी, ज्ञान टपक रहा था। आज हमें किसी को जुकाम भी हो जाता है ना, चलो क्लास मिस कर दो, या कोई थोड़ी तबीयत खराब होती है तो क्लास मिस कर देती है, उनके मुख से क्या टपक, इतना अव्यक्त होने से पहले एक घंटा या आधा घंटा कुछ भी ज्ञान टपक रहा था, कितनी प्रकृति जीत है। और जब अव्यक्त हुए फौरन उड़े, कोई था सामने, दादी को हाथ दिया जा रहे हैं, प्रकृति जीत भी मोह जीत भी, किससे कोई मोह, नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा, बाबा 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 हमेशा। हम बताएं बाबा क्या करते थे, हमेशा अपने को पीछे रखते थे, कभी अपना शो नहीं करते थे। मैंने खुद देखा, हमारे जब पटियाला में हमने निमंत्रण दिया, बाबा आए थे हमारे स्टूडेंट्स के निमंत्रण पर, ना फूल लिया ना हार लिया कुछ नहीं, हम तो इतना बड़ा हमने एक मकान लिया था, कोठी ली थी जिसमें फुहारे वगैरह लगे हुए थे बहुत। बाबा आया देखा बच्चों ने इतना इंतजाम किया है, तो बाबा तो चंद घंटों के लिए आए थे, मम्मा को छोड़ के चले गए, अब मम्मा को रखो। यानी कभी भी कभी 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 हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट होता था ना, वो कविता सुनाएगा, तो जहां ब्रह्मा की महिमा आई बस बंद करो, इन सब बातों के वो खिलाफ थे कि मेरी महिमा मत करो। और एकदम क्या था, हम जब पहले फर्स्ट टाइम यहाँ मधुबन में आए उसमें मम्मा की माँ रोचा भी जिंदा थी, बाबा की युगल जो थी यशोदा वो भी जिंदा थी, सब थे। लेकिन क्या रोचा क्या बोलती थी मम्मा को, मम्मा, और मम्मा क्या बोलती थी, बेटी, बच्ची। ये बताइए कितनी बड़ी बात है, मम्मा की जो माँ थी मम्मा को मम्मा बोल रही है, और माँ जो है मम्मा जो है उसको बच्ची बोल रही है। कितना वंडरफुल खेल था। और बाबा की युगल यशोदा बाबा को बाबा बोल रही है और बाबा उसको बच्ची बोल रहा है। आप बताओ कहीं देखा ये, वंडरफुल कमाल की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक गांधी जी ने अपने युगल को कह क्या माँ कहा तो कितनी उसकी महिमा है। और यहाँ तो सारा ही ऐसा इस प्रकार से था। मुझे कभी ये मालूम नहीं था कि आल उन्नर दादी की गुलजार बच्ची है, आई डिड नॉट नो, बहुत समय तक पता नहीं लगा। तो यहाँ तो बिल्कुल सब न्यारी प्यारी चीज है। मुझे एक दफा वो जो वो थी ना दादा बिश्किशोर और उनकी जो युगल थी क्या नाम था, संतरी, किसी को नहीं मालूम था कि ये युगल है। बताओ कितना वंडरफुल खेल है, कितनी बड़ी ये तपस्या, कितनी बड़ी ये धारणा है। वो था तो फिर क्या हुआ, हम ये मैं बता रहा था कि जो बाप समान बनना तो कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। पहली स्टेज यह है फरिश्ता बनने की, मैं बताऊं आपको जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं आजकल। हम आपने भट्टी की, आप बिल्कुल लाल तपे हुए दिख रहे हैं, बड़ा अच्छे भट्टी आपने की, अच्छी बात है, चार दिन किया। लेकिन हम जो छोटा मोटा पुरुषार्थ कर, मैं थोड़ा बताता हूं कैसे अपने में ज्यादा से ज्यादा, बाबा का 8 घंटे योग करो, वो कर सकते अगर हम थोड़ा अटेंशन रखे तो। तो कर्मातीत बनना हमको पहली स्टेज यह है हम ब्राह्मणों की के बाबा या हम बाबा बाप समान विकर्मा जीत बन जाए। इट इज द फर्स्ट स्टेज, वी शुड बिकम विकर्मा जीत। अब हम ब्राह्मणों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप, समझे। बाबा तब भी कहते थे बच्चे अगर विकल्प आता है उसको कर्म में नहीं आना चाहिए, स्टॉप करो। पहला तो था हम विकर्माजीत बने, बहुत पुरानी बात है। सेकंड क्या है, विकल्पाजीत, नो विकल्प नाउ। हम ब्राह्मणों में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, सेकंड स्टेज आइए, वो भी पार कर गए। अभी हमारे ब्राह्मणों में विकल्प मीन्स नेगेटिव आया तो जो हमने योग लगाया है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। विकल्प इतनी खराब चीज है, वातावरण बिगड़ जाएगा। नो विकर्म एंड नो विकल्प, बता दें आपको डरना चाहिए कि अगर विकल्प आया हटाओ, आने मत दो। पहले तो आए नहीं, आया तो उसको जगह स्थान मत दो मन में, नो विकल्प नहीं आता होगा। मैं समझता हूं बाबा को फेथ है हम बच्चों पर, कभी मेरे बच्चों में विकल्प नहीं आता, ठीक है, ये बात भी ठीक होगी, नहीं आता होगा। थर्ड स्टेज क्या है कर्मातीत बनने की, व्यर्थ आतीत, नो व्यर्थ। अब बाबा इसी पर जोर दे रहा है, जब देखो बाबा कहता है व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो। अव्यक्त माता दादा क्या कहती है, अब वो विकल्पों की बात नहीं करते, वो तो बच्चे संपूर्ण विकल्प खत्म हुए। बाबा कहता है नो व्यर्थ, अभी व्यर्थ नहीं चाहिए, व्यर्थ समाप्त करो। पहले कहते थे हमारी बाबा कहते थे क्यों क्या कब कैसे कौन किसने किया, ये व्यर्थ है, ये कहाँ कहाँ करना व्यर्थ है। अभी उस दिन दादी गुलजार क्लास करा थी, नहीं ये तो है ही व्यर्थ। अभी आप बैठे हैं, आपको अहमदाबाद का ख्याल आ गया, वो भी व्यर्थ है। जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प है तो वो है वास्तव में ठीक, ये है व्यर्थ, नो व्यर्थ। सुनो कितनी बड़ा बड़ी बात है ये, बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते हैं कि 108 की माला में और 8 की माला में और लक्ष्मी नारायण बनने में कोई मासी का घर थोड़ा है, नो व्यर्थ। ये अभी बैठे यही बैठे हो, बुद्धि कहीं और जगह नहीं जानी चाहिए, यानी जो जितना हम समय चाहे उतना हम समय जिस जगह मन को लगाना चाहे मन वही लगे, ये बात है, इसे कहते हैं नो व्यर्थ। अब व्यर्थ भी नहीं चाहिए बहुत, बाबा कहते हैं ठीक है, विकर्म भी नहीं होगा, विकल्प भी नहीं होगा, व्यर्थ भी बहुत कम होगा। लेकिन एक बात की कमी है, वो कमी ठीक करनी है, कौन सी कमी है मालूम है, भले व्यर्थ भी नहीं है, बाबा कहते समर्थ भी बहुत कम है। समझे, कमी है कि हमारे में समर्थ संकल्प कम आते हैं। भले व्यर्थ नहीं आता होगा, बहुत कम आता होगा, लेकिन समर्थ आना चाहिए बार बार। कोशिश करनी चाहिए कि मेरे हर संकल्प विशेष हो, बाबा का हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल विशेष था। बाबा किसी को ऐसे देख भी लेंगे ना, वो उड़ जाएगा। ये बाप समान बनने की बात कर रहा हूं। बाबा किसी पर ऐसे हाथ रख देंगे जैसे कि रूई का हाथ रखा है, फरिश्ते हाथ रख रहा है, ऐसा बनना है। बाबा किसी को उंगली पकड़ लेंगे, वो फूला नहीं समाएगा, ऐसा विशेष, उसका हर बात विशेष थी, ऐसा बनना है भाई। तो कैसे होगा जब हमारा व्यर्थ नहीं होगा, विकल्प तो छोड़ो, विकर्म तो छोड़ो, व्यर्थ भी ना हो। हम बताएं आपको, अभी हम ब्राह्मणों में व्यर्थ भी कम होगा, विकल्प तो छोड़ो विकर्म भी नहीं होगा, परंतु ये समर्थ बहुत कम है। तो मैं उस तरीकों को कोशिश करता हूं कि मेरे में समर्थ हो, शुद्ध संकल्प हो, विशेष संकल्प हो, वो हम कोशिश करते हैं। और लास्ट ये नो साधारण, हमारा संकल्प साधारण ना हो। अब हमारे संकल्प साधारण बहुत चलते हैं। अभी आप वहां गन्ने का रस पी के यहां पहुंचे, क्या सोच रहे थे? व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या विचार करो, क्या सोच रहे थे? कुछ का नथिंग। हम बताएं हमारा बहुत समय जो है नथिंग में जाता है। हम पैदल चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाना अपने आप मुख में जाता है, कोई सोचना नहीं पड़ता, सांस ले रहे हैं अपने आप होता है। वी आर थिंकिंग नथिंग। तभी दादी ने कहा, दादी जानकी ने, अपने विचारों पर पुनर्विचार करो, क्योंकि सारे जो बात है, सारे पुरुषार्थ का जो वो न्यूक्लियस है, जो सारे पुरुषार्थ का जो धुरी है, वो है संकल्प। बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। चला चेहरा कैसे बनेगा, आप कोशिश करके देखो, आपको काला गोरा तो नहीं बनेगा। अगर लगातार हमारे अंदर, फेस इज दी इंडेक्स ऑफ माइंड, लगातार बहुत समय तक शुद्ध संकल्प चलते हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, मैं पूज्य हूं, ये शुद्ध संकल्प चलते हैं, अनुभूति करते रहते हैं साथ साथ, आपका मैं समझता हूं रूहानियत वाला चेहरा हो जाएगा। अगर साधारण संकल्प चलेंगे तो साधारण चेहरा हो, इट इज पॉसिबल। यही करना है, ये नहीं कि हम कोई क्या बन जाएंगे, आप में रूहानियत, हम सभी में रूहानियत आ जाएगी, बाप समान हम रूहानियत वाले बन जाएंगे अगर हम लगातार ये पुरुषार्थ करेंगे। नो अदर संकल्प, बार बार रिवाइज करो, हम भी करते हैं, कोशिश करते हैं, रिवाइज करो। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, बच्चे जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। सुन लीजिए, आपने सुनी होगी बहुत पहले की, रिवाइज इट, यही बात अगेन एंड अगेन, और संकल्प मत आने दो। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, ये बिंदु हैं। हमारा जो योग लगता है, मिलन कैसे होता है? थ्रू संकल्प। हम बाबा से मिलन कैसे मिलाते हैं? संकल्पों द्वारा। हमारा कोई योग वो संकल्प निर्संकल्प नहीं है, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ, कोई मन में संकल्प ना हो, नहीं। हमारा शुद्ध संकल्प लाना है बार बार, तभी तो हमारा मिलेगा बाबा से। हमारा शुद्ध संकल्प प्रेषित करना है, भेजना है, और संकल्प को हटाना है। अगेन एंड अगेन, मैं आत्मा हूं, बाबा का हूं। अभी बाबा कहते हैं, चलते फिरते वो मुरली में था, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो शुक्रिया बाबा, ये बार बार रिवाइज करो, और संकल्प मत आने दो। मैं कहता हूं लौकिक कार्य भी है ना, उसको भी ज्यादा वो मत, अपने आप काम ठीक बाबा करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। हमारा ऐसा बाबा करता है, इतनी बड़ी प्रेस का कारोबार है, वी डोंट थिंक मच अबाउट इट, कोई सोचते नहीं है, अपने आप बाबा से अब ठीक काम कराता है। अगर ज्यादा हम इसी बात में लगे रहेंगे और संकल्पों को हटा के शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहेंगे, तो क्या है हमारा, हम बाबा की सेवा अपने चेहरे से, चलन भी क्या होती है, कर्म, एज यू थिंक बिफोर यू एक्ट, कर्म करने से पहले सोचो, बोलने से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक। तो थिंकिंग पर बड़ा हमें विचार करना है, अपने विचारों को बदलना है और विचारों को हटा करके शुद्ध विचार लाने हैं। बाबा ने एक बहुत बढ़िया एक युक्ति बताई थी अवक बाप दादा ने, हम तो वो कोशिश करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, कि अपनी 5 स्टेजेस को बार बार रिवाइज करो। देखो साकार बाबा ने तो हमेशा कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाबा ने कहा कि तुम परम मेरे घर को याद करो, बाबा ने कहा यात्रा पर चलो, ये सब बाबा ने कहा ड्रामा को याद करो। लेकिन जो अव्यक्त बाप दादा ने ये बात कही है कि 5 स्टेजेस को याद करो, उसमें रमण करो, इसमें सब चीज आ जाती है, आत्मा भी आ जाती है, अपना घर भी आ जाता है, शिव बाबा भी आ जाता है, स्वर्ग का वर्षा भी आ जाता है, चक्कर भी आ जाता है और ब्राह्मण स्टेज भी आती है। सब कितनी वंडरफुल बात है। खुश हम कहते हैं बिंदु बन बिंदु को याद तो करो, लेकिन कौन सा बिंदु? ज्योति बिंदु, इतना सागर है, वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सिंधु है। जब तक उससे कोई वो नहीं लगाएंगे हम कोई एडजेक्टिव, तब तक उसकी भाषणा कैसे आएगी? भले आप वो ठीक बाबा कहते हैं कि वो ज्वालामुखी बन करो, वो ठीक है, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूं अत्यंत सुख की याद का करो। आज बाबा कहते हैं इसको मिलने के बाद और क्या चाहिए, इसको अत्यंत सुख की अनुभूति हो गई, मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, सत्युग में मिलती नहीं है, यही मिलती है ब्राह्मण जीवन में। तो बाबा हम तो कभी एक दफा दादी गुलजार ने कहा योग क्या है, सिंपल नाचो गाओ खुशी मनाओ, ये दादी ने बोला था। नाचना मीन्स एक पांव यहां एक पांव परमधाम में एक पांव सत्युग में, हो गया नाचना, ये बुद्धि का नाचना हो गया ना ये। और गाओ बाबा की महिमा के गीत गाओ, जो गुण है 7 गुण है, ज्ञान का सागर, पवित्रता सागर, उसको रिवाइज करो और अपने में भरो वो। और खुशी, खुश तो आप रहेंगे जब ये करें, खुशी मनाएंगे मनाएंगे, सिंपल बना, बहुत डीप में मत जाओ। हम तो सिंपल करते चलते फिरते, मैं हर कदम पर कहता हूं बा बा बाबा, बुद्धि में बाबा रहेगा तो क्या होगा, कोई विक्रम तो होगा नहीं। कितना हमारा मीठा बाबा है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अंदर अंदर रिवाइज करो, अजपा जाप करो। आई टेल यू, बहुत मुश्किल मत बनाओ योग को, सहज बनाओ। देखो बाबा ने कहा था कि 8 बार जो है आप लोग सारे दिन में 8 बार या 5 बार ऐसा कोई 8 बार कहा था, ये इसको रिवाइज करो अपनी 5 स्टेजेस को, आप करते हैं? और बाबा ने कहा अगर नहीं किया सारे दिन में, सोने से पहले कर्क करो। तो देखो हम करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते शायद, तो बताइए फिर विनाश कैसे आएगा, अंतिम समय कैसे आएगा? जो बाबा ने कहा हम तो वो करते नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है कि सारे दिन में कम से कम 8 बार तो करो। क्या मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, बाबा का हूं, परमधाम का वासी हूं? पहले निराकारी स्टेज, फिर आकारी या वो निर्विकारी स्टेज, फिर अलंकारी स्टेज, फिर वो निरहंकारी स्टेज, पर आकारी स्टेज। ये 5 शब्द हैं, 5 शब्द भी याद रहे, हम तो करते हैं, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी। ब्राह्मण निरहंकारी है, ओबीडियंट सर्वेंट है। इस प्रकार से हम रिवाइज करें, इसको खुशी खुशी में लाए, अत्यंत सुख की प्राप्ति करें, मौज मस्ती में रहे, बाबा की याद में रहे, बाबा बाबा हमेशा करते रहे। हम तो एक बात बता के टाइम हो गया आपका, लेट हो जाएंगे, एक बताता हूं, कोशिश करता हूं मैं मन में सदा बाबा की याद रहे, बाबा बाबा एंड बाबा, नथिंग एल्स। वाचा में क्या हो, बाबा का ज्ञान हो, बार बार किसी को सुनाओ, इसके अलावा और कुछ बात मत करो, ज्ञान ज्ञान। और कर्म में क्या करना है बोलो, इतना बड़ा कर्म करते हैं हम, जो सोचते हैं बाबा तुम भी कराने वाले हो, करण करावन हार वो है, तब भी बाबा की याद। मन भी ठीक हो जाएगा, वाचा भी ठीक होगा, कर्म भी ठीक होगा, तो बाप समान तो बन ही जाएंगे, विशेष हो जाएगा। मन में बाबा की याद, वाचा में बाबा का ज्ञान, और कर्म में बाबा ही करा रहा है, मैं तो एक निमित्त हूं। कितना मीठा बाबा है, कहां से कहां बाबा हमको बता रहे हैं सदा। हम एक और बात सुनाता हूं जो मैं पुरुषार्थ करता हूं अपना, मैं अपने संस्कारों को बदलना है, यही पुरुषार्थ है ना। वो मन बुद्धि दोनों काम करते हैं, बुद्धि रूपी जो तीसरा आंख है सदा परम धाम में लगा हो शिव बाबा के पास। बैकग्राउंड वो कौन सा है? रेड, वो परम धाम का जो है गोल्डन रेड, उसमें बिंदु चारों तरफ उसकी लाइट है। हमारी मेरी आंख वो देख रही है, अभी भी देख रही है, उसको देख रहा हूं मैं आज। फिर मन में शुद्ध संकल्प, मन में संकल्प शुद्ध और बुद्धि देख रही है, मन बुद्धि दोनों बिजी हो गए तो क्या होगा? ना मन भी वही एकाग्र हो गया, बुद्धि भी एकाग्र होगी तो जरूर उससे फ्लो आएगा ना। मन बुद्धि दोनों को लगाओ और उसको देखो, उसके विजन बनाओ। जो हम कोशिश करते हैं, आप बड़े योगी बैठे हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मैं जो कोशिश करता हूं चलते फिरते भी बुद्धि जो दूरबीन से देख रहा हूं शिव बाबा को परम धाम में, बिंदु चारों तरफ लाइट परम धाम की लाइट पे, उसका बैकग्राउंड जो है कोई चित्र विदाउट बैकग्राउंड नहीं होता, बिंदु को देख रहा हूं परम धाम की दीवार है, उसे बिंदु है, उसमें लाइट है, मैं उसको मेरी आंख देख रही है। और मन में शुद्ध संकल्प, बाबा आप तो ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है, शांति के, उसके गुण अपनी अपने भी गुण गाता है, उसके भी करती है, ऐसे ऐसे करते करते और कोई संकल्प आएगा नहीं। वी शुड गो ऑन रिवाइजिंग इट। एक हमारे आजकल क्या है, तलैटी में बहुत लोग आया, रिटायर्ड लोग बहुत आया, कहता क्या अब ये तो योग ही होगा और कोई काम ही नहीं है, बस बैंक में जमा कर दिया फिक्स्ड, कोई चिंता नहीं है, बस ठीक है रिटायर्ड है और की बात है। बाबा मुरली बाबा की सुनते होगा ना, एक पैर में बाबा कहता है बच्चे क्या है योग क्या है, अपने को आत्मा ने मुझे बाप को याद को, सिंपल सहज क्या मुश्किल बात है। दूसरे पैर में बाबा कहता है बच्चे यथार्थ योग में रहना कोई मासी का घर नहीं है। देखा कभी आपने पूरा यथार्थ क्या मतलब इसका? तो यही यथार्थ, हर वक्त बाबा की याद रहे, अजपा अजाप बाबा बाबा बाबा, मैं आत्मा हूं शुद्ध हूं, अपनी अपनी याद हो, बाबा की याद हो, घर की याद हो। देखो बाबा ने कितनी बातें बताई है, बच्चे जिसको तुम चक्कर का ज्ञान दे दोगे अगर निश्चय आ गया वो पूरे चक्कर में आएगा, चक्कर फिराओ चक्करवर्ती राजा बन जाओ। अरे वाह आप बताइए, कोई पुरुषार्थ और नहीं, चक्कर फिराओ और चक्रवर्ती राजा बन जाओ, बंडर है तो कितना सिंपल पुरुषार्थ है। अब माता हमारी जानती है, हमारी लोके माता भी जानती है, बुजुर्ग है 108 साल की, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम, फिर चक्कर घुमा दिया और चक्रवर्ती रूट बनेंगे। भगवानो वाच किसने कहा? ये भगवान ने कहा चक्कर घुमाओ और चक्रवर्ती राजा बन जाओ। तो कितना सिंपल पुरुषार्थ है, बड़ी इजी बात है, बस केवल एक बात है अटेंशन देने की बात है और कुछ नहीं। हम वही बाबा आज भी मुरली में था, परिकाल था, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, अपने को याद करो, अपने गुणों को याद करो, बाबा को याद करो, घर को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, वर्षे को याद करो, ये जो पांच स्टेजेस है इसमें सब चीज आ जाती है। हम तो इस पर बहुत अटेंशन देते हैं और जब देखते हैं सारा दिन कुछ और काम था तो रात्रि को बैठ करके भी याद करके तब सोएंगे। तो आप भी ऐसा करना भाई कि जब अगर ये आप बस हर वक्त करना चाहिए, केवल 5-8 बार की बात नहीं है, अगर 8 बार भी नहीं किया तो कम से कम 8 बार करके फिर सोना, ऐसा आप यहां से निश्चय करके जाए। आप तो बड़ी भट्टी में तपके जा रहे हैं, बड़ा खजाना, बड़े शुद्ध संकल्पों खजाना आपने जमा किया होगा, उस शुद्ध संकल्पों से ही वास्तव में प्योरिटी आती है, पावर आती है। पॉजिटिव संकल्प से क्या आती है? प्योरिटी एंड पावर, दो चीजें आती है। और सत्युग में क्या चाहिए? क्राउन ऑफ प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर, केवल शुद्ध संकल्पों से आती है। देख लीजिए आपके सदा शुद्ध संकल्प चलते रहते हैं, पॉजिटिव संकल्प, आपको प्योरिटी भी आ जाएगी और पावर, डबल क्राउन किंग बन जाएंगे। तो क्या करना है? इन शुद्ध संकल्पों को बार बार जमा करते रहो, छोड़ो मत इसको, करते रहो करते रहो करते रहो, लगे रहो। हम भी लगे हुए, आप सभी लगे हुए और यहां पर आप आए, बड़े खुशकिस्मत है कि आपको और मिलेगा, पुश मिलेगी और आप बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके बाबा का, बाप दादा को, बाबा को आप प्रत्यक्ष करें, यही मेरी हमारी शुभकामना है। और हम भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।